संबंध। अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। व्याख्या, समोहम सर्वभूतेश, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूं। तात्पर्य यह है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव व्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदं सर्वभूतानां 5:29। मैं कहीं कम कहीं अधिक, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूं और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूं, अंत्यज में कम हूं और ब्राह्मण में अधिक हूं, जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूं और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूं, ये बात है नहीं। कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं, मेरे स्वरूप होने से वे मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैं सब में समान हूं। मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। कारण यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और ज्यादा नहीं हूं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है, यहां प्रिय शब्द का अर्थ राग समझना चाहिए, क्योंकि द्वेष शब्द के साथ राग शब्द ही ठीक बैठता है, क्योंकि राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भगवान इसी का निषेध करते हुए कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग और द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मुझसे विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा कोई शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वो मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूं, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मुझे समान रीति से प्यारे भी है। हां, ये बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में जाएगा। अशुभ कर्म करने वाला नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा, परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग और द्वेष के विषय नहीं है। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कारण कि वे मेरे साक्षात अंश हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु वह व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और ये हाथ खराब है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे कोई राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्ताव में आचरण में भेद है, इसलिए उनके परिणाम में भेद अलग अलग होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समूहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के अंदर राग द्वेष होता है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैति तेषु चाप्यम्। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मुझे ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रियां मन वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं, 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक भजन करने वाले मुझ में है और मैं उनमें हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपने को मुझ में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव है, संसार में रहने वाले हैं। वो यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं? इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में और अपने आप में भी मुझे ही मानते हैं, वे मुझ में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र में आया है, इसलिए वे मुझ में और मैं उनमें हूं। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है, एक देशीयता है। इस परिच्छिन्नता को मिटने से ही वे मुझ में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट होते हैं, दूसरों में कम प्रकट होते हैं, ये आपकी विषमता क्यों है? तो भगवान कहते हैं, भैया मुझ में ये विषमता तो भक्त के कारण से है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए, और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हूं तो वो मेरी विषमता ही हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं तो ये न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मुझ में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। 4:11। अतः यह विषमता मुझ में भक्त के भावों को लेकर है। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चींचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो ये विषमता गाय की नहीं है प्रत्युत चींचड़ों की बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जमती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो ये विषमता बिजली की नहीं है प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, प्रत्युत सूर्य के सामने रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य यह है कि विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं है। सूर्य की किरणें तो सब पर समान पड़ती है, वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें ही थे, केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहां ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसी योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूं। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय जाति आदि को लेकर कहते हैं तब तो भगवान में विषमता पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता, परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूं और भगवान मुझ में है इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। परिशिष्ट भाव समोहम सर्वभूतेषु। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सन्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः है। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बन जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने यहाँ, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में है और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं से वह विशेष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में ये विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से, भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं मिटते। प्रत्युत जो भगवान के सन्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। छठे अध्याय का 30वां श्लोक। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रियः। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। मैते तेषु चाप्यम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है जो कि भगवान से विमुख है। तत्व से तो भगवान समोहम सर्वभूतेषु है, पर अनुभव करने में भगवान मैते तेषु चाप्यहम है। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्ति ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सन्मुख होना है। रामायण में आया है, सातव सममोहि मय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। तात्पर्य यह है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में ये विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मैते तेषु चाप्यहम पदों से कहा है।